और अगला टॉपिक हमारा है गुस्ल के बारे में। ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमने बहुत कम सीखी और बहुत कम पढ़ी, लेकिन बाब गुस्ल मैत, गुस्ल मैत के मसाइल। अब आप देखिए कि इसको सुनते ही कुछ लोग तो डर जाएंगे, नहीं 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 मैं नहीं दे सकती, मैंने नहीं करना, मैं नहीं करती। लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोचिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, लेकिन हम तो ख़ास तौर पर परदेस में बैठे हैं, कहीं कोई मुसलमान हमारा अपना प्यारा या कोई रिश्तेदार या साथी फौत हो जाए और सिर्फ आप मौजूद हैं, और नॉन मुस्लिम्स आपको ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको गुस्ल देना है तो दे लीजिए, नहीं तो हम अपने तरीके से देंगे, तो क्या आप नहीं देंगी? पहली बात। दूसरी बात देखिए कि अगर इस टॉपिक को सुनते ही खौफ आता है तो क्या हम रोज़ ख़ुद गुस्ल नहीं करते? यही जिस्म होता है, रूह को तो गुस्ल नहीं देना ना, गुस्ल तो जिस्म को ही देते हैं, फ़र्क क्या है? हम मैयत से इतना क्यों डरते हैं? सिर्फ उसमें से क्या गया, रूह गई ना, जिस्म तो वही होता है, तो इससे खौफ नहीं करना चाहिए। इसके छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपके सामने रखूंगी, अगर आप नोट करें, और अगर हमें वक्त में गुंजाइश मिले इन्हीं दिनों में किसी वक्त में, तो हम यहाँ एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं एक वर्कशॉप की सूरत में, और आपको वीडियोस भी दिखाई जा सकती हैं, उनके लिंक्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बुकलेट सा हमारा तैयार हो जाएगा, और इस पे बहुत सारे हैंडआउट्स मिलते भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जितनी मर्जी बुक्स मिल जाएं, जब तक आप उसको बैठ के एक टीचर के साथ पढ़ते नहीं या उसके प्रैक्टिकल नहीं देखते तो वो करना नहीं आता। तो हम देखेंगे कि गुस्ल कैसे देते हैं। सबसे पहली बात यह कि मैयत को गुस्ल देने से पहले अच्छी तरह से उसके जिस्म को टटोला जाए, पेट को दबाया जाता है, यानी आप इसको यूँ समझिए कि जो गुस्ल देने वाला होता है वो फुली एक्सपर्ट होता है, और हाथों पे ग्लव्स डाल के तो उसके पेट को इस तरह से दबाया जाता है कि अगर जिस्म के अंदर कोई गंदगी है, ऑफ कोर्स सडन डेथ भी होती है, कभी खाना खाया होता है तो वो जिस्म है, तो जिस्म बिल्कुल लूज हो जाता है, मरते ही जिस्म के सब सुराख जो है वो खुल जाते हैं, तो वो फिर जिस्म से सब निकल जाता है और पेट साफ हो जाता है। तो इसके लिए ये ज़रूरत है, और इसी एक हदीस पे हम शेयर करेंगे, उसमें एक और मसला भी निकलता है कि करीब तरीन रिश्तेदारों को मैयत को लहद में उतारना चाहिए, यानी कब्र में दफनाते वक्त करीबी रिश्तेदारों। अब ये दोनों बातें जिस हदीस में हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत है और हाकिम और बहकी की सनद है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने लगा। अब आप देखिए अली की खुशकिस्मती कि अल्लाह के नबी को उन्होंने गुस्ल दिया, तो आपके जिस्म अथर को टटोला और कोई चीज़ ना पाई। कई कई दिन के तो फाके होते थे, हमारा तो पेट शायद ही किसी वक्त खाली रहता हो, उनका तो पेट किसी वक्त भरता था। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह जिंदगी में पाक साफ थे, इसी तरह अपनी वफात के बाद भी पाक साफ थे। इधर से एक मैं अपने लिए साइड की बात लेती हूँ कि हर वक्त नहीं खाना चाहिए, दिन का कुछ हिस्सा ऐसा रखिए कि आपका पेट बिल्कुल एम्प्टी हो। आप देखिए कि एक ह्यूमन साइकिल है ना, जब आप खाना खाते हैं तो आपको वॉशरूम में जाने की ज़रूरत पेश आती है, जब वॉशरूम में गए तो पिछली गंदगी निकल गई ना, और पेट में खाना हजम होने में कुछ वक्त लगता है। ऐसा वक्त ज़रूर आना चाहिए कि मैदा, पेट जिसमें खाना है, और इसी तरह एक्सक्रीशन जहाँ से निकलती है, ये पूरा हिस्सा क्लियर हो। ये मुझे कहते हुए सिर्फ समझाने के लिए जो मेरी फीलिंग बन रही है, माइंड मैप वो बन रहा है किचन का। आप देखिए कि हमारे किचन क्या है, एक सर्विंग रूम है ना, पकता भी वह है, खाते भी वही हैं और सिमटता है। आप अपने अंदर के स्टमक को समझने के लिए अपने किचन को लीजिए। हम जब खाना पकाते हैं तो किचन खूब फैलता है ना, चूल्हा गंदा होता है, ये है, सिंक है, सब है, छिलके हैं, कर लिया। जब खाना पक जाता है मोस्टली, तो उसके साथ साथ सिस्टर्स मैंने देखा है जो माशाल्लाह समझदार होती हैं, वो साथ साथ छिलके भी फेंकती जाती है, यानी बाज़ तो खाना पकाते हैं तो किचन ही गंदा हो जाता है, लेकिन बाद साथ साथ साफ करती हैं। उसके बाद क्या, हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो हमारे बर्तन निकल के डाइनिंग टेबल पे आते हैं, वो हिस्सा थोड़ा सा मैसी लगता है, डोंगे निकले खाना खाए, जब खा लिया तो डाइनिंग टेबल थोड़ा गंदा हुआ, खाने के फौरन बाद देखें तो ट्रैश कैन और उसके अराउंड और सिंक गंदा होता है। लेकिन फिर क्या होता है, खाना खा के सब समेट के 1-1.5 घंटे में किचन साफ करके आप दरवाज़ा बंद करके आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, एक किचन, आइडियल किचन क्या है कि पकते हुए उसका एक हिस्सा गंदा हो तो साफ़ हो जाए, खाते हुए दूसरा हिस्सा गंदा हुआ, और समेटने के बाद सब साफ करके किचन अब आपका डोर लॉक। मैं अक्सर साथियों को कहती हूँ, जिनके साथ भी मेरा करीब से इंटरेक्शन होता है, कि कुछ वक्त अपने घर के किचन को बंद कर दें, बल्कि बच्चों वाला घर है तो लॉक कर दें और लिख दें, जैसे होटलों में हॉस्टल्स में टाइम होता है ना, मेस टाइम ये है, खाने का टाइम ये है वो है, किचन हर वक्त खुला नहीं होना चाहिए, अब आपके चेहरों का स्माइल मुझे बता रहा है कि आज हमारे किचन का क्या हाल है। बस जो हमारे किचन का हाल है ना, ये हमारे पेट का हाल है। जिस तरह किचन को कुछ वक्त सुकून मिले, खाली रहे, इस तरह हमारे स्टमक को भी खाली होना चाहिए। लेकिन आज जो लाइफ स्टाइल है वो फ़र्क है। देखिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी सल्लम ने एक दिन में 2 बार खाते देखा। दूसरी बार खा रही थी तो कहा कि आयशा, क्या तू ये चाहती है कि तेरा शुगल सिर्फ खाना रह जाए? कैन यू बिलीव। फिर इसी तरह आप अपने बड़ों को, ससुर सास दादा दादी को देखा होगा, उनके खाने के बहुत सर्टन टाइम्स थे। बल्कि मैंने अपने घर में करीब से नाना को जो देखा तो उनका खाना भी एक ही स्टाइल का होता था। हमारे तो नाश्ते बदल जाते ना, आज क्या खाएं, आज ब्रेड खा लें, आज सीरियल खा लें, आज पराठा खा लें। उनका हमेशा एक फुलका, ऊपर बटर लगा हुआ और दही की प्लेट, दैट्स इट। सबको पता था अब्बा जी का ये नाश्ता, और एक अमाउंट का फुल्का, और रात को भी यही और दिन में ये, और बीच में चंक्स नहीं खाते थे, जंक नहीं। आज क्या होता है, जो हमारा स्पेशली इस वक्त यंगस्टर्स और बच्चों और वेस्टर्न स्टाइल में थोड़ा खाते हैं, बच्चे बच्चियाँ तो बिल्कुल ही थोड़ा खाती हैं, लेकिन फिर हर 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। हमारे बड़े क्या था कि एक सर्टन अमाउंट खा के 6-7 घंटे कुछ नहीं खाते थे। फ़र्क पड़ता है। बस इसको जहन में रखें कि अल्लाह के नबी अगर हर वक्त हमारी तरह खा रहे होते हैं तो कम अज़ कम वो ये दीन की खिदमत ना करते जो कर चुके हैं। और आज भी मैं सिर्फ मोहब्बत के साथ कहूँगी कि हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, हर शहर हर मुल्क में मेरा तो वास्ता पड़ता है, कि जो सीखना भी चाहती हैं, दीन की खिदमत भी करना चाहती हैं, वॉलेंटियर्स भी बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ किचन उनको ये काम नहीं करने देता। आज हर चीज़ ज़्यादा क्यों है, आप नोट करके देखें, उसका ताल्लुक हमारे खाने से है। गंदगी भी खाने की वजह से डलती है, किचन भी गंदे होते हैं। फिर देखिए, घर में जितना ट्रैश है वो खाने के साथ ही होता है। ग्रोसरी लेने जा रहे हैं तो खाने के लिए, समेट रहे हैं तो खाने के लिए, पका रहे हैं तो खाने के लिए। फिर अब देखिए, जितना खाएंगे उतने वॉशरूम यूज़ होंगे, तो वॉशरूम साफ़ करने हैं। वॉशरूम में गए तो टॉवल्स बहुत भर गए, तो उतनी लॉन्ड्री भर गई, फिर लॉन्ड्री भरी, तो ये सारा दिन कर क्या रहे हैं? क्या मैं कोई मशीन हूँ? तो इसको लिमिटाइज कीजिए, आप देखेंगे कि आपका वक्त बनेगा। अपने बच्चों के साथ बैठ के इसको सेटल डाउन कर लें, ये वक्त इस चीज़ का है। और यकीन करें, एक दफ़ा बच्चों को सिखा दें, बच्चे आपको फिर अमल करवाएंगे। ख़ास इस वक्त में सब खाएं। एक और भी प्रॉब्लम है फिर हमारा, पहले होता था एक जगह सब बैठ के खा लेते थे, माँ भी फारिग, बच्चे भी फारिग। अब हर बच्चे का आना और खाना फ़र्क, पहली बात टाइम फ़र्क, फिर दूसरा उसका मेन्यू फ़र्क। ये इसकी गोभी गोश्त है तो इसका बर्गर बन रहा है, तो इसका पिज़्ज़ा आ रहा है, और इसका मैकडोनल्ड आ रहा है। गलत है बात, क्या ये आज घरों का नक्शा नहीं है? कम व बेश यही है। जो माएँ बहुत बासूल है, उन्होंने बच्चों को इस चीज़ पे रखा है कि एक चीज़ पकेगी। मुझे एक माँ का जुमला भूलता नहीं है, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना तो भी यही खाना है, तो चुप करके खा लो। कभी अपने बच्चों से ना पूछा करें क्या खाओगे, बर्गर बना दूँ, चाइनीज़ बना दूँ, क्योंकि फ्रीज़र भी तो हमने भरा हुआ है ना ले ले के चीज़ें। हम तो शुक्र करते हैं कोई आए खाए ताकि जगह बने, ताकि हम और चीज़ें डालें। कम खरीदें, कम खरीदें, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। कम खरीदेंगे, कम ऑप्शंस होंगी, बच्चों की नज़रें भरी रहेंगी। बार बार रोज़ हर वक्त हर चीज़ देखकर कहते हैं है ही कुछ नहीं, नथिंग टू ईट, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है इतना कुछ देख के, क्योंकि वो कहते हैं ये तो रोज़ देखते हैं। एक चीज़ रखें, एक दिन सब्ज़ी, एक दिन दाल, एक दिन गोश्त, फिर 5वें दिन आप उनको कोई चीज़ खिलाएंगे तो उनको मज़ा आएगा। और हर वक्त चिकन भी अवेलेबल है, फ़िश भी अवेलेबल है, सब्ज़ी भी है, दूध भी, तो उनको खुशी कैसे होगी? तो बहरहाल ये एक बात तस्किया की थी कि हमारे नबी का पेट खाली था जब वफ़ात हुए, आप साफ थे, और लोगों में से 4 आदमी आपका जिस्में अतर कब्र में उतारने पर मामूर हुए, यानी उनको इस काम पर फाइज किया गया, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो जो आपके दामाद थे, हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे, हज़रत फ़जल ये आपके चचा साद भाई थे, कज़न थे, और आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सालेह रदियल्लाहु अन्हो थे। इन सब ने मिलकर अल्लाह के नबी को लाहत में उतारा और ऊपर कच्ची ईंटें नसब की। ये रिवायत हाकिम और बहकी की है। तो इसमें से हमारे अमल की बात जो क्या निकली कि मैयत का पेट खाली कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में होता क्या कि जब गुसल दे देते हैं ना तो फिर जिस्म में कुछ गंदगी हो तो मैयत को जब हिलाते जुलाते हैं कफनाते हैं तो जिस्म से फिर गंदगी निकल कर कफन गंदा हो जाता है। इसलिए एक दफ़ा इसको दबा के फिर उसके बाद उधर बल्कि सब जगह रुई डाल दी जाती है ताकि गंदगी जिस्म से ना निकले। करें कैसे, गुसल कैसे दें? नंबर 1, मैयत के गुसल का आगाज़ वुज़ू से कीजिए। अभी पढ़ लें, फिर मैं अपने लफ्ज़ों में दोहराऊंगी। फिर गुस्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में बेरी के पत्ते डालना मसनून है। सिद्र जो होता है अरबी में, ये छोटी छोटी बेरियाँ, एक तो बेरीज होती है ना, बस बेरीज ही जैसी चीज़ एक बेरी होती है, सेब जैसा छोटा सा फल। बहरहाल इसके पत्ते डालने चाहिए, नहीं बेरी के पत्ते डालना, क्योंकि ये पत्ते जो होते हैं ना, इनके अंदर एंटीसेप्टिक भी होता है और कीड़े मकोड़ों से ये अलग रखती है। फिर इसी तरह गुसल जो है ये ताक, यानी ऑड नंबर्स में, यानी हर उसको 3 बार, 5 बार या 7 मरतबा होना चाहिए। फिर इसी तरह आखिरी बार गुसल देने के लिए पानी में काफूर डालना मसनून है। ये खुशबू होती है, जिसमें में अगर ज़ाहिर है कोई ऐसी गंदगी है या बीमारी या ज़ख़म की वजह से अगर उसमें कुछ स्मेल है, तो काफूर के साथ वो ख़त्म भी होता है। और इसके साथ भी कहते हैं कि कीड़े मकोड़े जिस्म के पास नहीं आते। और मैयत खातून हो, यानी अगर फीमेल में डेड बॉडी है, तो गुसल के बाद सर के बालों की 3 चुटियां बनाकर पीछे डाल देनी चाहिए, यानी पूरे बालों को 3 हिस्सों में डालें और हर हिस्से को अलग चुटिया की तरफ गूंद के छोड़ दें, क्योंकि बाद में फिर उस सारी को पीछे बांधना आसान हो जाएगा। अब ये सारी बातें जो हमें एक हदीस से मिलती हैं, वो हदीस मुत्तफिक अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम है, और हज़रत उम्मे अतिया इसकी रिवायत करती हैं। कहती हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब को गुसल दे रही थी, तो आप तशरीफ़ लाए और फरमाया इसे 3 या 5 मरतबा, या अगर मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा मरतबा गुसल देना, और पानी में बेरी के पत्ते डाल लेना। जब तुम गुसल कर चुको तो मुझे इत्तला देना, यानी ये बात कहकर आप चले गए। कहती हैं कि जब हम फारिग हो गए तो अल्लाह के नबी को इत्तला दी गई, तो आपने अपना तहबंद, यानी कपड़ा जो आप पहनते थे, हमारी तरफ़ फेंका और कहा कि इसको इसके जिस्म पर लपेट दो, यानी उनके कफन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल शुदा कपड़ा इस्तेमाल हुआ। एक दूसरी रिवायत में आता है कि आपने कहा कि इसे ताक मरतबा, यानी 3, 5 या 7 मरतबा गुसल दो, और आगाज़ वुज़ू के अज़ाज़ से दाहिनी तरफ से शुरू करो, राइट साइड से शुरू करो। उम्मे अतिया कहती हैं कि हमने ऐसे ही किया, बालों की 3 चुटियां बनाई और उनको पीछे कर दिया। अब बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अब आप देखिए कि इससे क्या समझ आया, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, जो इंसानी गुसल हम करते हैं ना, जुनाबत का या प्योरिटी का जो एक फ़र्ज़ गुसल है, बिल्कुल वही गुसल इसी में मैयत का पेट दबाकर पहले जिस्म से गंदगी निकाली जाए, मैयत को कवर्ड रखना चाहिए ताकि उसके जिस्म पर नज़र ना पड़े, आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कुछ दिख गया तो उसको छुपाना चाहिए। फिर आप ग्लव्स पहन लें या हाथों में कपड़ा रख लें, उसके पेट को दबाएं, साफ़ कर दें। साफ़ जब हो गया, उसके बाद उसका इस्तंजा करवाएं, ग्लव्स बदल लें, क्लीन करें। उसके बाद बिल्कुल जैसे आप और मैं अपना वजू करते हैं, एक बंदा करता है काम और दूसरा उसका हेल्पर होता है। बहुत ज़्यादा लोगों को जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा पीछे से सहारा दे के वजू की तरह वजू कराएं। पहले उसके हाथ धुलाएं, फिर उसके बाद मुंह में और नाक में पानी डालें। अब इतना तो डलेगा ही नहीं, क्योंकि जिस्म में तो कुछ ठहरना ही नहीं, तो बस इशारे करने काफ़ी होते हैं। फिर उसके बाद जब वजू हो जाए तो राइट साइड से फिर सर के बालों पर पानी डालते हुए, सेम वही तरीका है। इसमें कोई फारसी नहीं, कोई इसमें दिखाने करने वाली ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई अनयूजल चीज़ है। बस पानी में बेरी के पत्ते डाल लिए जाते हैं ताकि पानी के अंदर थोड़े से अच्छे असरात आ जाएं, और हर चीज़ जो भी करें राइट साइड से करें। हम भी तो हर चीज़ को 3 दफ़े करते हैं ना, वज़ू करते, ऑड नंबर अल्लाह को पसंद है, तो इस तरह से बस गुसल हो जाता है। और अगली बात क्या है कि गुसल देने वाला अगर मैयत में कोई नागवार चीज़ देखता है, जिस्म पे कोई ऐब हो सकता है, कोई नक्स है, कोई ज़ख़म है, कोई बाल है, कुछ भी है, तो उसकी पर्दापोशी करे, तो अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाह माफ़ कर देता है। हदीस में आता है अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हो से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी मैयत को गुसल दिया और कोई नागवार चीज़ देखकर इसकी पर्दापोशी की, अल्लाह ताला इसके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा, और जिसने किसी मुसलमान को कफन दिया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे सुंदुस का लिबास पहनाएंगे। तबरानी की रिवायत है। देखिए, हमें सबको ड्रेसअप होने का शौक़ होता है ना, पीछे हमने पढ़ा ताज़ियत करने वाले को ग्रीन हुल्ला होगा। आप सोचें, प्योर ग्रीन कलर का खूबसूरत सा आपका गाउन हो और अल्लाह ताला आपको दिलवा रहे हैं, और यहाँ सुंदस, सुंदस प्योर रेशम को कहते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट किस्म का होगा, और ये किसको है जिसको कफन पहनाया। तो क्या इसमें हमारे लिए अमल की बात क्या है कि कभी भी बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या ज़िंदगी में मैं और आप पसंद करते हैं कि हमारे जिस्म के ऐब खुले? जिस्म पे अगर एक स्टेन लग जाए तो लोग उसको छुपा रहे होते हैं, एक एक बाल को चुन चुन के मुंह से उतारते हैं कि कहीं ये दूसरों को दिखे ना। तो मैयत की बातें नहीं बतानी चाहिए, और कुछ लोग नासमझी में अगर ऐसी बातें बता देते हैं तो वो दुरुस्त नहीं। बस हो सकता है कि कोई मैयत बीमार हो, उसने जिस्म की सफाई नहीं की हुई, या कोई ऐब हो, तो बस उसको डाल दीजिए, उसका जिक्र ना करें। बाज़ दफ़ा मैयत का रंग बदल जाता है, बाज़ दफ़ा जिस्म पे स्टेन्स चढ़ जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं। हर वो बात जो बाद में एक अफसाना बन के जुबान से आम हो जाए, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए कि मैयत को गुसल देने के बाद खुद गुसल करना मुस्तहब है, यानी रिकमेंडेड है, फर्ज नहीं है। आपने किसी को गुसल दिलाया है, अब आप गुसल कर सकते हैं तो कर लें, अच्छा है, स्ट्रेस रिलीज होगा, जिस्म पे कोई गंदगी की छींट आ सकती है, लेकिन उस तरह का फ़र्ज नहीं है कि आप नमाज भी ना पढ़ें कि मैंने गुसल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा से तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैयत को गुसल देने के बाद गुसल है और मैयत को कंधा देने के बाद वुजू है। कैसे? तिरमिज़ी की रिवायत में क्या आ गया, आप गुसल करें तो फिर गुसल करें, और कुछ लोग कंधा देते हैं ना मैयत को उठा के लेके जाते हैं कब्रिस्तान तक, तो फिर उसके बाद वुजू करना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि ये फ़र्ज़ नहीं है, इज़ रिकमेंडेड। फिर एक और रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास से रदी अल्लाह अन्हु, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम मैयत को गुसल दो तो तुम पर गुसल वाजिब नहीं, क्योंकि मैयत नजस नहीं है, लिहाजा यही काफ़ी है कि अपने हाथ धो लो। हाकिम और बहकी की रिवायत है, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाने से क्या पता चला, कर सकें तो कर लें, फ़र्ज़ नहीं है, करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। इसी तरफ देखिए, कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं, उनके साथ क्या किया जाए, तो शहीद के लिए गुस्ल नहीं है, ये भी एक अल्लाह की हिकमत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए ओहद में से, यानी ओहद में आपको पता है कि 70 सहाबा शहीद हो गए थे, मुसलमानों के लिए बड़ी गहरी चोट थी, दो शहीदों को एक कपड़े में इकट्ठा करते, यानी जैसे नीचे चादर डाल के एक की डेड बॉडी रखते फिर दूसरी रखते, फिर पूछते इन दोनों में से किसको कुरान ज़्यादा याद है। सोचिए ज़रा, डेड बॉडी है और साथियों से पूछ रहे हैं कि इसमें से कुरान किसको ज़्यादा आता था, जिसके बारे में लोग बताते कि इसको ज़्यादा आता था उसको आप पहले कब्र में डालते, यानी उसको प्रायोरिटाइज करते कि इसको ज़्यादा ऑनर दी जाए, और फरमाते क़यामत के दिन मैं इनकी शहादत की गवाही दूंगा। फिर इसके बाद आप शोहदा को खून समेत दफन करने का हुक्म देते, ना इनका गुसल होता और ना इन पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती। ये बुखारी की रिवायत है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब क्या है, मैं इसको पढ़ते हुए बहुत अपने दिल के अंदर एक तड़प महसूस कर रही हूँ। अल्लाह ताला को अपने रास्ते में निकलने वाले बड़े प्यारे लगते हैं। आप आज जब अल्लाह के कामों में निकलते हैं, पसीने भी आते हैं, धूप भी लगती है, गर्मी सर्दी है, हो सकता है आपके जिस्म से बसांत आए, किसी को स्मेल आए, लेकिन अल्लाह को वो भी खूबसूरत लगती है। इसी तरह जब अल्लाह के रास्ते में कोई लड़ता है तो जिस्म पे जख्म कटे छटे, अल्लाह उन कटे फटे जिस्मों को इतना वैल्यू देता है कि अल्लाह कहता है कि ला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। सूरह बकरा में भी आता है और आल इमरान में भी आता है कि जो मेरे रास्ते में मर जाते हैं तुम उनको मुर्दा भी ना कहो, क्योंकि उनका वो मिशन जिंदा जिस पे जिए। फिर आप सोचिए, डेड बॉडी का तसव्वुर में लाइए, जख्म है, मट्टी है, पसीना है, अल्लाह कहते हैं इस गठली को एज इट इज़ मट्टी में डाल दो कि मैं कल क़यामत के दिन इनको ऐसे ही उठाऊँगा। और रिवायात में आता है कि शहीद क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उसके जिस्म में से इसी तरह फ्रेश ब्लड निकल रहा होगा, जिसमें से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। ये छोटा नहीं है। आप देखिए, अल्लाह के रास्ते में निकलना, ज़िंदगी में निकले तो ये शहादत हक की गवाही है, और अगर जान दे दी तो शहीद बन गए। मिशन बनाइए, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है अब ज़िंदगी का, बच्चों की खिदमतें कर लीं, खिला लिया, पिला लिया, अब आप कुछ लोगों ने शादियां कर दी, वो चलता ही रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी का एक ही मिशन बनाइए कि अल्लाह तेरे दीन को सर्व करना है, इल्म सीख के, तो इल्म सिखा के, तो बच्चों को पढ़ा के सिखा के, जिस दर्जे में अल्लाह का दीन दुनिया में नाफिज हो जाए, ये अल्लाह ताला की आपके यहाँ बहुत कदर भी होगी। और दूसरी बात एक ही है कि गुसल क्यों नहीं, क्योंकि अल्लाह उसी हालत में निकालना चाहता है। आपके जहन में एक सवाल उभरना चाहिए कि नमाज़े जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई जाती शहीद की, तो इसको भी समझ लीजिए। आगे एक पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी सीरीज़ में, जनाजे का मसाइल, जिसको उसमें डिटेल चाहिए वो हम भी सुने, लेकिन आप यहाँ ये समझिए कि नमाज़े जनाजा क्या है, दुआ की दरख्वास्त है। जैसे अब मैं ज़िंदा हूँ ना, तो मैं आपसे कहती हूँ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, तो आप दुआ करते हैं ना, अल्लाह इनको बख्श दे, इनको ये कर दे वो कर दे, बस यही दुआ मरने की सूरत में नमाज़े जनाजा में ढल जाती है। आम लोगों को नमाज़े जनाजा की क्यों ज़रूरत है कि हमारे सर पे इतने गुनाह, क्या हम लोगों से कहते हैं माफ़ करो और आखिर नमाज़े जनाजा में हम दुआ करते हैं अल्लाह मग़फिर लहू वरहम हु वाफ़ी वाफ़ वन वक्रम नुज़ुलहू मुदख़लहू, कितनी दुआएं मांगते हैं। तो शहीद का तो पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है तो हदीस में आता है कि उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं, ख़ास तौर पे आज के दौर में जब लव्स इस जिहाद और टेररिज्म और इन चीज़ों ने इतने माइंड पल्यूट कर दिए हैं कि अब तो माएँ दुआ भी नहीं करती कि अल्लाह हमारे बच्चे शहीद हों, अल्लाह हमारे बच्चों को जिहाद में ले जा। हमारा तो खौफ से रंग वक हो जाता है कि कहीं कोई CID वाला सुन तो नहीं रहा हमारे लफ्ज़ के, जिहाद का लफ्ज़ तो नहीं आ गया। ये आज उम्मत मुस्लिमा के डिक्लाइन की एक अलामत है कि हम अपने इस्लाम और अपने दीन के दिफा के लिए उठने को भी खतरा महसूस करते हैं। पहले दौर की माँ ऐसी नहीं थी, वो दुआएं करती थी अल्लाह मुझे मुजाहिद की माँ बनाना, मुजाहिद की बेटी बनाना। आज ज़रा खबर मिल जाए कि हमारे मर्दों में कोई जिहाद का नाम लेता है तो हम 100 किस्म के वहमों का शिकार होते हैं। तो बहरहाल ये है कि शहीद को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगला मसला गुस्ल से मुतलिक बहुत अहम है क्योंकि हमारा माइंड सेटअप इस पर बहुत बदल चुका है। और वो क्या है, बेस्ट पर्सन कौन है जो किसी को गुस्ल दे? शौहर को बीवी और बीवी को शौहर। बिला कराहत शौहर अपनी बीवी को और बीवी शौहर को गुस्ल दे सकते। देखिए अल्लाह नहीं चाहता कि हमारा पर्दा किसी के ऊपर भी खुले। मजबूरन में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में जिस जगह पर्दा खोल दिया, मरने के बाद भी कोशिश करे वही हो। ना कोई दूसरी सिस्टर हमारा जिस्म देखें, ना उनके जहन में हमारे बारे में ख्याल आए। हदीस सुन लीजिए, आप खुद पढ़ें सुनेंगे तो आप नबी सल्लम का अपनी बीवियों के साथ कुर्ब और उस मोहब्बत को इसमें महसूस करेंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लम बकी से एक जनाजा पढ़कर आए, यानी बकी कब्रिस्तान का नाम है मदीना में, तो वहाँ से वापस आए और मुझे तलाश किया। घर आके अपनी बीवियों को ढूंढा करते थे। कितना लाड और प्यार था आपका। इस पे तो अगर आप सुनना चाहें तो वो सीरीज सुनिए कि प्रॉफिट एट होम, बड़ी डिटेल से हमने इसमें बात की थी कि अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ कितने फ्रेंडली थे, जॉली थे, मजाक करते थे, उनके साथ रेस लगाते थे, उनके साथ घर के काम करते थे। आज के माँ घर भी आ जाएं तो बस मियाँ कुछ और कर रहे हैं तो बीवी कुछ और कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि हमने हर चीज़ के ऊपर एक वैक्स लगा दिया, रिश्तों में वो मिठास ही नहीं रही। मसरूफियात के नाम पे और अजीबो गरीब गैजेट्स हमारे घरों में आ गए। घर में रहते हुए, एक कमरे में रहते हुए, एक एक काम कर रहा है, दूसरा दूसरा कर रहा है। तो बहरहाल आयशा कहती कि मुझे तलाश किया, कहने लगे मेरे सर में दर्द था और मैं कह रही थी हाय मेरा सर फटा जा रहा है। जैसे हम भी अक्सर कहते हैं ना मेरा सर फटा जा रहा है, तो आपने फरमाया नहीं बल्कि मेरा सर, नबी सल्लम ने ये नहीं कहा मेरा सर फट रहा है, लेकिन बीवी से मोहब्बत की बात की कि तुम्हारे सर में दर्द है तो मैं इसको ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे मेरे सर में दर्द है। सच बताएं कितना प्यार था हजरत आयशा से आपको। हाँ फिर उसके बाद आपने फरमाया आयशा अगर तुम मुझसे पहले फौत हो जाओ तो तुम्हारे सारे काम मैं खुद करूँगा। नबी को नहीं पता कि पहले किसकी मौत आनी, ये एक मसला इसमें निकल गया कि नबी को भी गैब नहीं पता। खुद तुम्हें गुसल दूँ, खुद तुम्हें कफन पहनाऊँ और खुद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़कर दफन करूँ, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो गोया कि आपने ये कहा तो ये जायज़ है तो कहा ना। फिर इसी तरह एक और रिवायत, ये अहमद और इब्ने माजा की थी, अगली रिवायत भी हज़रत आयशा से ही है। फरमाया करती थी जो बात मुझे बाद में मालूम हुई अगर मुझे पहले मालूम होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवाज मुतहरात ही गुस्ल देती। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब डेथ हुई ना तो हज़रत आयशा को उस वक्त ये मसला नहीं मालूम था, समझ रहे, क्योंकि उम्र कितनी थी उनकी, 18 साल की उम्र में बेवा हो गई थी और 57 ईयर्स की एज तक, ये बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन आधी सदी इन्होंने दीन की खिदमत की है। कहते हैं कि अगर आज इल्म को जमा किया जाए तो आधा इल्म हमें हज़रत आयशा के नाते से मिला हदीस का। तो कहती है अगर ये हदीस मुझे उस वक्त पता होती जब अल्लाह के नबी के गुसल का वक्त था तो हम खुद देती, हम किसी और को ना देने देती। फिर इसी तरह एक और रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक से। रिवायत है कि अबू बकर सिद्दीक की बीवी हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने हज़रत अबू बकर को वफात के बाद गुसल दिया और मौजूद महाजरीन से दरियाफ्त किया मैं रोज़े से हूँ और आज शदीद सर्दी का दिन है, क्या मुझे ज़रूर गुसल करना चाहिए? लोगों ने कहा कि ज़रूरी नहीं। इमाम मालिक ने मौता में इस रिवायत को नकल किया। तो क्या पता चला कि हज़रत अबू बकर को गुसल उनकी बीवी ने दिया था और वो रोज़े से थी उस वक़्त भी और सर्दी भी शदीद थी, तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद गुसल नहीं किया। अब आप ये दो तीन बातों के बाद थोड़ी सी बात सुन लें कि जो आज हमारे दौर में आम कर दी गई कि मरते ही शौहर और बीवी का निकाह टूटता है। पिछले सेशन में इस पे बात हुई थी, निकाह नहीं टूटता। अगर निकाह टूटे तो आप बताइए कि ये कौन करे? और अगर मैं गलत ना कहूँ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत फातिमा को गुस्ल दिया था, अपनी बीवी को दिया था। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है इस तरह के मामलात में, अगर ऐसे वक्त में मौका मिले तो। बल्कि और हया का तकाजा यही है कि वही शख्स दे कि जिसके आगे इंसान का खुलना कोई बुरा ना हो। फिर इसी तरह आप देखिए कि मैयत को गुसल देने के लिए पर्दे का अहतमाम करना ज़रूरी है, खुलेआम गुसल नहीं देना चाहिए। हज़रत अबू सईद अल खुदरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे और कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे। ये मुस्लिम की रिवायत है। अच्छा, क्या ये सिर्फ मरने वालों के सतर की बात है? ये जिंदों की है। तो फिर वैक्स करवाते हुए क्या करना चाहिए? क्या एक औरत बिला वजह अपना पूरा जिस्म दूसरी औरत के सामने खोल सकती है? नहीं खोलना चाहिए। सतर कितना होता है ये भी सुन लीजिए। नीस होती है ना, घुटनों से लेकर नाफ तक, यानी जो प्राइवेट पार्ट से नीचे और उसके ऊपर का हिस्सा। ठीक है, इसमें तो 100% कोई शक नहीं, ये मर्द का भी है औरत का भी। बाज़ कहते हैं इतना ही है जितना मर्द का है, बाज़ इसमें ब्रेस्ट को भी लेते हैं। लेकिन जो सही बात सारी बातों का जमा करें वो क्या है कि किसी ज़रूरत के तहत, मिसाल के बच्चे को दूध पिलाना है औरत ने, तो अगर वो किसी ऐसी जगह पिलाती है कि अगर किसी दूसरे के सामने हल्का सा उसका इजहार हो जाता है तो ये एक अलग बात है। लेकिन असल में औरत को देखा जाए तो हर वो चीज़ जो शहवत उभारती है वो दूसरी औरतों के सामने भी नहीं खोलना चाहिए। औरतों से अगर आप अपने मालिश करवाते हैं, कोई भी ऐसे काम कराते हैं, तो घुटनों तक करवा लीजिए, यानी हाफ लेग्स जिसको आप आज की ज़ुबान में कहते हैं, और इसी तरह से बाजू और गर्दन तक, लेकिन बीच का हिस्सा ज़रूरत के बगैर नहीं खोलना चाहिए। अब कई लोग इस पे इतनी लंबी बहस करते हैं, अच्छा डॉक्टर्स के पास भी तो जाते हैं, डिलीवरी के वक्त भी तो ये होता है। तो देखिए कि मजबूरी कितनी है, ज़रूरत कितनी है, खुद देख लें। इवन अगर आप डिलीवरी में भी एक औरत बेड पे है तो उसका जिस्म बाकी छुपा होना चाहिए, पूरे जिस्म को खोलना ये वेस्टर्न स्टाइल तो हो सकता है, इस्लामिक नहीं है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन बड़ी परेशान बैठी हुई थी, तो उनकी दोस्त ने कहा कि तुम्हें आज क्या गम है? तो कहने लगी कि मुझे ये गम है कि मरने के बाद ये औरत की जब मैयत लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर एक चादर डाल देते हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि औरत के उभार हैं जिस्म के, ये औरत की लाश है मर्द की। तो मुझे बड़ा गम है कि जब मेरे साथ करेंगे तो मेरी हया को बुरा लगता है। तो दोस्त ने कहा कि मैं हबशा गई थी तो मैंने वहाँ एक चीज़ देखी कि औरत का जनाजा होता था तो उस चारपाई के चारों तरफ स्टिक्स लगा देते हैं, यानी आप सोचिए ना एक एक वाली के, और उस पर चादर डालते हैं तो पता नहीं चलता कि अंदर औरत है कि मर्द। तो कहने लगी कि मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मर जाऊँ तो तुम मेरे साथ ऐसा ही करना। और जहाँ तक आता है कि वो कहती थी कि मेरा जनाजा रात को उठाना कि कोई गैर महरम मुझे ना देखे। अब आप फ़र्क देख सकते हैं, मरने के बाद की हया, और यहाँ ज़िंदगी में हम कहीं नाम लेने को दिल तो नहीं चाहता लेकिन लिए बगैर समझ भी नहीं आती, कहीं जिम के नाम पे और कहीं हम स्विमिंग के नाम पे और कहीं एक्सरसाइजेस के नाम पे पूरा पूरा जिस्म औरतों के सामने खोल दें। देखिए बस कपड़े ऐसे होते हैं जो कपड़े होने के बावजूद कपड़े नहीं लगते, इतने स्ट्रेची, इतने सी थ्रू, इतने उनके अंदर यानी जिस्म के उभार दिखते हैं। अवॉइड करना चाहिए ये जो आज बुराइयां औरतों के साथ दिख रही हैं, मर्दों की मर्दों के साथ, तो उसमें ये बहुत बड़ी वजह है कि ये इहतमाम नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आप अपने आप को ज़हनी तौर पर इस काबिल पाते हैं कि किसी को गुसल दे सकें? वेरी इजी, सिंपल, क्यों नहीं, उसमें क्या हर्ज क्या? कुछ भी नहीं। ये अच्छा सवाल है ना कि क्या गुसल देते वक्त कोई दुआ पढ़ने की? कुछ भी नहीं है, सिंपल। और आप देखिए कि मोस्टली अगर वॉशरूम्स में गुसल दिया जा रहा है, जैसे हम खुद गुसल करते हुए कुछ नहीं पढ़ते तो मैयत को भी कुछ नहीं। हमारा मसला पता क्या, हम कहते हैं बस कुछ खास चीज़ें मिल जाएं, इस वक्त पे ये पढ़ लो, इस वक्त पे ये पढ़ लो। हालांकि ये डे टू डे लाइफ है। चले हम कफन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको मजीद थोड़े से जहन खुलेगा।